नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 5G रोल ओवर से 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश की उम्मीद। बढ़ते प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका इसराइल को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा और भारत वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबून और प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति अल्जीरिया, मोरिटेनिया और मलावी की यात्रा के पहले चरण में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में है। ये यात्रा अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को अधिक मजबूत करने पर केंद्रित है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मोरिटेनिया जाएंगी और आखिरी चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि भारत ने मात्र 22 महीनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80% आबादी को कवर करते हुए 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू कर दी है। नई दिल्ली में 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5G नेटवर्क के प्रसार से 2040 तक अर्थव्यवस्था में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सिटीज और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे रहा है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव डोरेन बोगदान मार्टिन ने कहा कि भारत उन कई देशों के लिए एक आदर्श है जो डिजिटल परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने भारत में 5G दूरसंचार सेवाओं के तेजी से शुरू होने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महत्वपूर्ण निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। ई माइग्रेट पोर्टल पर 2,81,000 पंजीकृत विदेशी नियोक्ता है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल का शुभारंभ भारतीयों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता सृजित करने के सरकार के प्रयासों का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा में 24 घंटे कार्य करने वाले बहुभाषीय हेल्पलाइन नंबरों जैसी सुविधा उपलब्ध है। श्री जयशंकर ने कहा कि इस पोर्टल का नया संस्करण विदेश में भारतीय कामगारों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर आज से सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आज से अगले वर्ष 1 जनवरी तक लागू रहेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध भी शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि ये प्रतिबंध सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लगाया गया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से सहयोग की अपील की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा लगभग 732 उत्पादों के लिए 150 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं। नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने उपभोक्ताओं से BIS मार्क वाले उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की भावना वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत के दृष्टिकोण का मूल है। दिल्ली में औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसका विषय स्मार्ट विनियमन सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद प्रदान करना है। श्री नड्डा ने आशा व्यक्त की कि ICDRA न केवल ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बल्कि राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए भी एक मंच के रूप में काम करेगा और सिफारिशें ठोस स्वास्थ्य सेवा ढांचे का निर्माण करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहां 140,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। नई दिल्ली में आज RBI 890 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने ये बात कही। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त जोखिम निवारण उपाय करने को कहा। श्री दास ने बढ़ते ऋण पर भी चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हरदी इलाके में कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई झड़पें में एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और ADC कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ बहराइच पहुंच गए हैं। जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बीच हरदी थाने के SO और महसी के प्रभारी समेत 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि कल हुई हिंसा के सिलसिले में 25 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोलकाता के चिकित्सा संघों के महासंघ फेमा ने जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल के समर्थन में आज सुबह 6 बजे से 48 घंटों तक चिकित्सा सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। संघ की ओर से डॉक्टर मुखर्जी ने बताया कि इस बंद में आपातकाल सेवाएं शामिल नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज COVID-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB फार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दायर की गई थी। केरल उच्च न्यायालय ने आज 2017 के यौन उत्पीड़न पीड़िता की एर्नाकुलम सत्र न्यायाधीश की तथ्य जांच रिपोर्ट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। मलयालम अभिनेता दिलीप भी इस मामले में एक आरोपी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजने और इसे संचालित करने के लिए लगभग 100 अमेरिकी सैनिक भेजने की घोषणा की है। एक वर्ष पहले हुए हमास के हमलों के बाद पहली बार अमेरिकी बल इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को आज सुबह बम की धमकी के बाद दिल्ली परिवर्तित कर दिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और अब तक की जांच में कुछ भी नहीं मिला है। मुंबई से मस्कट जाने वाली इंडिगो की उड़ान को भी इसी तरह की बम की धमकी मिली थी। प्रोटोकॉल के अनुसार विमान को व्यस्त जगह से अलग रखा गया और अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई। भारत अगले वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने इसकी पुष्टि की है। विश्व कप फाइनल से पहले वे कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत की थोक मुद्रास्फीति अगस्त 2024 के 1.31% से थोड़ी बढ़कर सितंबर में 1.84% हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति में वृद्धि खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण होती है। अगस्त महीने में खाद्य मूल्य की मुद्रास्फीति 3.11% थी जो सितंबर में बढ़कर 11.53% हो गई है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।